एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांसवा मारी आरुए की। शायद ये नाम उतना जाना पहचाना ना लगे।
हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ वोल्टेयर तो?
हाँ बिल्कुल, वोल्टेयर 18वीं सदी के वो मशहूर फ्रांसीसी विचारक, लेखक और व्यंग्यकार भी थे शायद, जिनकी बातें आज भी मतलब कितनी जरूरी लगती हैं।
बिल्कुल सही कहा। वोल्टेयर सिर्फ एक लेखक ही नहीं थे, वो तो एक तरह से प्रतीक बन गए थे, आप कह सकते हैं, तर्क का, सहिष्णुता का और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का। वो ज्ञानोदय, जिसे हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, उस दौर के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। वो एक ऐसा समय था जब यूरोप में सदियों पुरानी जो मान्यताएं थीं, जो निरंकुश सत्ताएं थीं, उन पर लोग सवाल उठा रहे थे।
तो आज की इस चर्चा का मकसद यही है कि हम वोल्टेयर के जीवन और उनके विचारों की उन खास कड़ियों को समझें, है ना?
हाँ बिल्कुल। कैसे उनके अनुभवों ने, उनकी लेखनी ने, उनकी लड़ाइयों ने न सिर्फ उनके अपने जमाने को बल्कि आने वाली सदियों को भी प्रभावित किया, और आज भी वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं?
सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके समय से। फ्रांस में उस वक्त माहौल कैसा था, मतलब क्या चल रहा था?
देखिए, माहौल काफी तनाव भरा था। एक तरफ तो लुई 14वें और फिर 15वें का निरंकुश शासन था, चर्च का बहुत दबदबा था और धार्मिक असहिष्णुता भी काफी थी,
अच्छा।
और दूसरी तरफ नए विचार पनप रहे थे, जैसे न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धांत आ चुके थे, जॉन लॉक का दर्शन था जो तर्क और अनुभव पर जोर देता था। तो लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, सरकार की शक्तियों को सीमित करने की बातें करने लगे थे, और पेरिस में जो कॉफी हाउस थे या सैलून जिन्हें कहते हैं, वो इन नई बहसों के अड्डे बन गए थे।
और इसी माहौल में 1694 में पेरिस में वोल्टेयर का जन्म हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनके पिता नोटरी थे।
हाँ, और उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो अच्छी हुई जेसुइट कॉलेज लुई ले ग्रैंड में, लेकिन जो पारंपरिक धार्मिक शिक्षा थी ना, उससे उनका मन शुरू से कुछ कह सकते हैं कि उखड़ा हुआ था।
अच्छा।
उनके पिता तो चाहते थे कि बेटा कानून की पढ़ाई करे, पर बेटे का दिल तो साहित्य में लगता था, तीखी बहसों में लगता था, और यही मिजाज था उनका कि जल्दी ही वो मुसीबत में भी पड़ गए।
मुसीबत?
हाँ,
कैसी मुसीबत?
1717 की बात है, तब वो सिर्फ कोई 23 साल के रहे होंगे। फ्रांस के जो शासक थे, रीजेंट, उन पर कुछ व्यंग्यात्मक लिख दिया उन्होंने। नतीजा, पेरिस की जो बदनाम जेल थी बास्टिल, वहां भेज दिए गए।
पास्टिल में? और मैंने सुना है कि वहीं उन्होंने वोल्टेयर नाम अपनाया था, क्या ये सच है?
हाँ, ये बात काफी कही जाती है, हालांकि एकदम पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। एक थ्योरी है कि ये उनके असली नाम ARoVETLI, जिसमें LI का मतलब लेजेन यानी छोटा, का ही एक एनाग्राम मतलब अक्षरों को उलट पुलट कर बनाया गया नाम था।
दिलचस्प है।
लेकिन हाँ, जेल से निकलने के बाद ये नाम उनकी पहचान बन गया। फिर कुछ साल बाद 1726 में एक रईस आदमी से उनका झगड़ा हो गया।
फिर से?
हाँ, और इस बार उन्हें फिर मुसीबत का सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा निर्वासन में।
और ये जो इंग्लैंड का निर्वासन था, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ, है ना?
हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा मोड़ था ये। इंग्लैंड में उन्होंने करीब 3 साल बिताया, और वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनकी सोच पर बहुत गहरा असर डाला।
क्या देखा उन्होंने वहां ऐसा?
मतलब उन्होंने देखा कि वहां संवैधानिक राजतंत्र हैं, जहां राजा की शक्तियां कानून से बंधी हुई हैं। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता देखी कि कैसे अलग अलग विचारों के लोग साथ रह सकते हैं। न्यूटन के विज्ञान और लॉक के दर्शन को उन्होंने और गहराई से समझा, और इन सब अनुभवों ने फ्रांस की जो व्यवस्था थी उसकी आलोचना को और तीखा बना दिया।
तो इसका असर उनकी लिखनी पर भी पड़ा होगा फौरन।
बिल्कुल पढ़ा। इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने 1734 में एक किताब लिखी, लेटर्स कंसर्निंग द इंग्लिश नेशन।
अच्छा।
इसमें उन्होंने खुलकर ब्रिटिश व्यवस्था की तारीफ की, उनकी सहिष्णुता की, उनके विज्ञान की, उनके दर्शन की। अब जाहिर है, ये फ्रांस की व्यवस्था पर सीधा सीधा तंज था।
तो फिर क्या हुआ?
नतीजा, किताब पर पाबंदी लगा दी गई, उसे जला दिया गया, और वोल्टेयर को एक बार फिर पेरिस छोड़कर भागना पड़ा।
कमाल है। मतलब सत्ता से उनका टकराव तो लगातार ही चलता रहा, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इसी दौरान वो आर्थिक रूप से काफी स्वतंत्र हो गए थे,
हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है।
जिससे उन्हें शायद बिना डरे लिखने की आजादी मिली।
वो लॉटरी वाला किस्सा क्या है?
हाँ, वो भी कमाल का है। उन्होंने अपने एक गणितज्ञ दोस्त के साथ मिलकर पेरिस की सरकारी लॉटरी में एक खामी, एक लूपहोल ढूंढ निकाला
अच्छा,
और फिर उन्होंने लगभग सारे टिकट खरीद लिए, जिससे उनका जीतना पक्का हो गया। इस तरह उन्होंने काफी पैसा कमाया।
वाह, और इस पैसे ने उन्हें काफी हद तक, जो शाही या अमीर संरक्षक होते थे उन पर निर्भर रहने से मुक्त कर दिया। अब वो अपनी शर्तों पर लिख सकते थे, बोल सकते थे,
और इसी आजादी के साथ उन्होंने अपने विचारों को और धार दी होगी। उनकी सबसे मशहूर रचनाओं में से एक कैंडिड है शायद, जो 1759 में आई।
हाँ, कैंडिड ये एक जबरदस्त व्यंग्य है, एक सटायर।
किस पर?
उस समय एक मशहूर दार्शनिक थे लाइबनिज, उनका एक विचार बहुत लोकप्रिय था कि ये दुनिया जो है ये सर्वोत्तम संभव दुनिया है, मतलब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।
हाँ, आशावादी विचार है।
बिल्कुल, वोल्टेयर ने इसी आशावाद का मजाक उड़ाया कैंडिड में। कहानी का जो हीरो है कैंडिड, वो बेचारा दुनिया भर में घूमता है और उसके साथ भयानक हादसे होते हैं। वो युद्ध देखता है, भूकंप, बीमारियां, इंसानी मूर्खता, सब कुछ झेलता है।
तो फिर अंत में क्या होता है?
अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि दुनिया को बदलने की बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें करने से कहीं बेहतर है कि हमें अपने बगीचे को विकसित करना चाहिए। इल्फू कुल्टीवे नोत्र जार्दा, ये फ्रेंच में उनका मशहूर वाक्य है।
अपने बगीचे को विकसित करना, इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह की निराशा है कि दुनिया तो बदल नहीं सकती, तो बस अपना काम करो?
इसे निराशा से ज्यादा हम व्यावहारिकता कह सकते हैं। वोल्टेयर का मतलब था कि बड़ी बड़ी अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट बहसों में उलझने के बजाय हमें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए, जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं उन पर काम करना चाहिए।
जैसे?
जैसे व्यावहारिक काम करना, छोटे छोटे सुधार लाना, अन्याय के खिलाफ ठोस कदम उठाना। और ये बात उन्होंने सिर्फ लिखी नहीं, उन्होंने असल में की भी।
आप शायद उनके फर्नी वाले दौर की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल, 1759 के आसपास वो स्विट्जरलैंड की सीमा के पास फर्नी नाम की जगह पर बस गए और वहां उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि एक तरह का आदर्श समुदाय बनाने की कोशिश की।
अच्छा, कैसे?
उन्होंने खेती में नए नए प्रयोग किए, घड़ियां बनाने के, रेशम बनाने के छोटे उद्योग लगाए, और सबसे अहम बात, फर्नी को अपना गढ़ बनाकर उन्होंने पूरे यूरोप में जहां कहीं भी अन्याय होता था, खासकर धार्मिक कट्टरता के जो शिकार होते थे, उनके लिए आवाज उठाई।
जैसे वो जॉन कैलास वाला मामला था।
हाँ, वो सबसे मशहूर मामला है। जॉन कैलास एक प्रोटेस्टेंट व्यापारी थे। उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो कैथोलिक बनना चाहता था।
ओ, ये तो भयानक है।
और उन्हें बहुत यातनाएं देकर मार डाला गया। वोल्टेयर ने जब ये सुना तो उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी। लेख लिखे, यूरोप के जो भी प्रभावशाली लोग थे, राजा महाराजा, विचारक, सबको पत्र लिखे।
और क्या हुआ फिर?
आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कैलास को मरणोपरांत निर्दोष साबित किया गया। और इसी अनुभव के बाद उन्होंने 1763 में वो मशहूर किताब लिखी, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता पर एक ग्रंथ।
ये किताब तो मानवाधिकारों के लिहाज से बहुत ही अहम मानी जाती है आज भी।
यकीनन, इसमें वोल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अलग अलग विचारों और धर्मों का एक साथ रहना समाज को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की भी बात की, खासकर ये जो यातना देने की प्रथा थी उसके सख्त खिलाफ लिखा। और यहीं पर उनका वो मशहूर नारा भी जुड़ता है, एक्रेसिल एंड फ्रेम,
बदनाम चीज को कुचल डालो। इसका क्या मतलब था? निशाना कौन था?
बदनाम चीज, लेम्फेम से उनका मतलब था हर तरह की धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, असहिष्णुता, वो सारी चीजें जिन्हें वो इंसान की तरक्की की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मानते थे, खासतौर पर संगठित चर्च की जो कट्टरता थी।
अच्छा,
ये नारा उनके खतों में अक्सर मिलता है जो अपने साथी दार्शनिकों को लिखते थे। एक तरह से ये लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान था।
तो अगर हम उनके मुख्य विचारों को समेटें तो धार्मिक सहिष्णुता हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
हाँ,
और तर्क का महत्व।
हाँ, ये तो थे ही, साथ में शक्तियों का पृथक्करण, मतलब सरकार की ताकत पर लगाम होनी चाहिए, और प्राकृतिक अधिकार, यानी इंसान के कुछ जन्मजात अधिकार होते हैं। उन्होंने अनुभवजन्य तर्क यानी एम्पिरिकल रीजन पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान आस्था से नहीं आता बल्कि अनुभव और तर्क से आता है।
और धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे? क्या वो नास्तिक थे?
नहीं, नास्तिक नहीं थे, वो देववादी थे। मतलब वो ईश्वर के अस्तित्व में तो विश्वास करते थे, लेकिन जो संगठित धर्म थे, उनके कर्मकांड, उनके चमत्कार, उन पर सवाल उठाते थे। उनका मानना था कि हम तर्क के जरिए, रीजन के जरिए ईश्वर तक पहुंच सकते हैं।
उनकी एक और बात बहुत मशहूर है जो अक्सर कही जाती है, मैं तुम्हारी बात से असहमत हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। क्या ये वाकई उन्होंने कहा था?
ये एक मजेदार बात है। ये शब्द इतने ज्यादा वॉल्टियर से जोड़े जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये लाइन हूबहू उन्होंने कभी नहीं लिखी।
अच्छा, तो फिर ये आई कहां से?
ये असल में उनकी एक जीवनी लिखने वाली थी, एवलिन बीट्रिस हॉल। उन्होंने 20वीं सदी में वोल्टेयर के विचारों का सार बताते हुए ये लाइन लिखी थी। लेकिन हाँ, ये लाइन उनके जज्बे को, उनकी भावना को बिल्कुल सही पकड़ती है। उन्होंने वाकई उन लोगों के लिए भी आवाज उठाई जिनके विचारों से वो शायद बिल्कुल सहमत नहीं थे। अभिव्यक्ति की आजादी के वो इतने बड़े पैरोकार थे।
इन विचारों का असर तो जाहिर है बहुत गहरा पड़ा होगा आगे चलकर।
बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति के विचारक, अमेरिकी क्रांति के विचारक, उन्होंने वोल्टेयर से बहुत प्रेरणा ली, खासकर मानवाधिकारों की घोषणा की बात हो या सरकार में शक्तियों के बंटवारे की बात हो। आज जो हम आधुनिक धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद देखते हैं या मानवाधिकार आंदोलन है, उनकी जड़ों में भी वोल्टेयर के विचार कहीं ना कहीं दिखते हैं। आज भी जब हम फ्री स्पीच की बात करते हैं या चर्च और स्टेट को अलग रखने की बात करते हैं, तो वोल्टेयर की दलीलें एकदम प्रासंगिक हो उठती हैं।
सही बात है। तभी तो आज भी अगर किसी को वोल्टेरियन कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि वो सत्ता पर बड़ा तीखा, व्यंग्यात्मक और थोड़ा संदेहवादी नजरिया रखता है।
बिल्कुल।
लेकिन क्या उनके विचारों की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं? मतलब क्या उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं?
हाँ, बिल्कुल उठाए जाते हैं, और वो जानना भी जरूरी है। एक आलोचना उनके अभिजात्यवाद को लेकर होती है, मतलब एलिटिज्म।
अच्छा, वो कैसे?
वोल्टेयर आम जनता पर, मतलब जो अशिक्षित जनता थी, उस पर बहुत भरोसा नहीं करते थे। वो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे। वो मानते थे कि प्रबुद्ध राजशाही बेहतर है, यानी एक ऐसा राजा हो जो समझदार हो, दार्शनिकों की सलाह माने।
ये तो आज के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता है, और उन पर पाखंड के भी आरोप लगते हैं शायद।
हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं, उन्होंने आज़ादी की इतनी बातें की लेकिन खुद व्यापार और निवेश से काफ़ी अमीर बने, और इसमें कुछ पैसा ऐसे उद्यमों से भी आया जो औपनिवेशिक व्यवस्था से जुड़े थे, और अप्रत्यक्ष रूप से दास व्यापार से भी। हालांकि ये भी सच है कि वो सामान्य तौर पर दास प्रथा के खिलाफ थे।
और एक और गंभीर आरोप जो मैंने पढ़ा वो यहूदी विरोध का है।
हाँ, ये सच है, और उनकी विरासत का एक मुश्किल और जटिल पहलू है। अपने समय के कई दूसरे यूरोपीय विचारकों की तरह वोल्टेयर की भी कुछ लेखों में यहूदियों और यहूदी धर्म के बारे में पूर्वाग्रह से भरी टिप्पणियां मिलती हैं।
ओह,
और ये बात उनकी सहिष्णुता की वकालत से मेल नहीं खाती। ये हमें याद दिलाता है कि जो ऐतिहासिक शख्सियतें होती हैं, उनका मूल्यांकन हमें उनके समय के संदर्भ में तो करना ही चाहिए, लेकिन आज की जो नैतिक मानदंड है उनसे भी देखना चाहिए।
सही कहा। इन आलोचनाओं के बावजूद उनका कद तो बहुत बड़ा है। उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्से भी तो हैं, जैसे वो कॉफी बहुत पीते थे।
हाँ, ये तो मशहूर है। कहा जाता है कि वो दिन में 40 कप तक कॉफी पी जाते थे।
40 कप?
हाँ, शायद यही उनकी इतनी लंबी उम्र और लगातार लिखने का राज था। 83 साल की उम्र तक जिए वो, जबकि डॉक्टर तो कहते थे कि वो ज्यादा नहीं जिएंगे।
और उनकी मौत के बाद भी विवाद हुआ था शायद। चर्च ने उन्हें ईसाई तरीके से दफनाने से मना कर दिया था।
हाँ बिल्कुल, उनके दोस्तों को उनका शव चुपके से पेरिस से बाहर ले जाना पड़ा और शैम्पेन इलाके के एक मठ में दफनाना पड़ा।
लेकिन बाद में
जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उनके अवशेषों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पेरिस लाया गया और पैंथियन में जगह दी गई, जहां फ्रांस के सबसे महान नायकों को दफनाया जाता है। ये दिखाता है कि क्रांति ने उन्हें किस तरह अपना नायक माना।
तो कुल मिलाकर वोल्टेयर भले ही कोई एक सिस्टमैटिक दार्शनिक न रहे हों, लेकिन वो ज्ञानोदय के जो मूल्य थे उनके सबसे प्रभावशाली और अथक योद्धा जरूर थे।
हाँ, उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी हाजिर जवाबी और अपने व्यंग्य को हथियार बनाया, और जो धार्मिक कट्टरता थी, जो निरंकुश राजशाही थी, उस पर जबरदस्त हमला किया। वो शायद पहले आधुनिक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, मतलब एक ऐसा लेखक जिसने अपनी कलम से सीधे अपने समय की नाइंसाफियों से टक्कर ली और दुनिया भर में लोगों की राय बनाने में मदद की। उन्होंने ये दिखाया कि विचार सचमुच दुनिया बदल सकते हैं।
तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ सकते हैं कि आज के दौर में जब हम गलत सूचना, हेट स्पीच और असहिष्णुता का इतना सामना कर रहे हैं, तब वोल्टेयर का वो नारा इखराजे लिनफाम, बदनाम चीज को कुचल डालो, यानी तर्कहीनता और कट्टरता का विरोध करना, ये कितना जरूरी है।
बिल्कुल, और साथ ही क्या हमें उनके दूसरे संदेश पर भी ध्यान देने की जरूरत है? कुलतीवे नोथ्र जार्दा, अपने बगीचे को विकसित करो, मतलब बड़ी बड़ी बहसों से परे अपने आसपास, अपनी दुनिया में ठोस सकारात्मक बदलाव लाने पर ध्यान देना। शायद जवाब इन दोनों के संतुलन में ही कहीं छिपा है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।